आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना है। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पांचवा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह द्वारा ये जो पाठ लिखा गया है, इसमें लेखक ने चिट्ठियों की अजीबोगरीब दुनिया के बारे में बताया है। लेखक के अनुसार पत्रों की जो उपयोगिता है वो हर युग में, हर काल में रही है। आजकल पत्र लिखने की जगह कई और चीजें आ गई हैं। पत्र की जगह कुछ और चीजों का इस्तेमाल अब हम करने लग गए हैं आधुनिक दुनिया में, लेकिन फिर भी जो पत्रों की जो उपयोगिता है, जो उनका महत्व है, वो कम नहीं हुआ है। उनका महत्व अपनी जगह पर है और उसे हर युग में वही महत्व मिला है, वही महत्व दिया जाता है, वही महत्व आज भी है, उसकी उपयोगिता आज भी है, उसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। तो ये पाठ पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। लेखक कहते हैं कि पत्रों की जो दुनिया है वो अजीबोगरीब है, पर इसका जो महत्व है वो हमेशा से था और आज भी है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, कभी उसका महत्व कम नहीं हुआ है। लेखक कहते हैं कि पत्र जो काम कर सकते हैं वो आजकल का जो आधुनिक साधन जो है, क्या है आधुनिक साधन, जैसे आज हम क्या करते हैं, पत्र लिखने की जगह क्या करते हैं, किसी से बात करनी होती तो फोन कर लेते हैं या फिर उसे SMS कर देते हैं। अभी तो और ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, हम WhatsApp करते हैं। तो पर लेखक का कहना है कि ये साधन पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते। और पत्र जैसा जो संतोष होता है, जो संतुष्टि आती है पत्र से, वो SMS का जो संदेश है वो नहीं दे सकता। पत्र जो है वो एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में बहुत सारे विवाद और नई घटनाओं की जो जड़ है वो भी क्या है, पत्र ही है। दुनिया के जो तमाम साहित्य है वो पत्रों पर केंद्रित है। मानव सभ्यता के विकास में भी इन पत्रों ने एक अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे पढ़ेंगे। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िक कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। लेखक कहते हैं कि पत्रों का हर जगह भाव जो है, जो अर्थ है, वो सब जगह एक ही जैसा है। हाँ, पर उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जरूर पुकारा जाता है। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू लेख तथा तमिल में इसे कड़िक कहा जाता है। पत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है, आप इन्हें संभाल कर रख सकते हो। मोबाइल के SMS ये सब तो डिलीट हो जाते हैं। फोन पे आप जो बात करते हैं वो भी आप एक बार को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट फिर भी उसमें वो फीलिंग नहीं आती, वो भाव नहीं आता। और चैट भी आप कितने दिन संभाल के रखेंगे SMS को, वो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाते हैं, या तो आप खुद ही डिलीट कर देंगे, आपकी मेमोरी फुल हो गई है, ओके डिलीट कर देते हैं। मतलब इनमें वो भावना नहीं है जो पत्र में मिलती है। पत्र आप सहेज कर रखते हैं, कुछ सालों के बाद उसी पत्र को देखेंगे तो आपको फिर से वही अतीत का पल जीने का, दोबारा जीने का मौका मिल सकता है। ये जो संतोष है, ये जो संतुष्टि है, ये आपको फोन के SMS या कॉल पे नहीं मिल सकती। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। लेखक कहते हैं कि हर एक की पत्र लेखन कला जो है वो अलग होती है। हर कोई पत्र को अपने अलग तरीके से लिखता है और हर किसी का अपना दायरा होता है। दुनिया भर में हर रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए निकलते हैं, उन्हें जहाँ जिस गंतव्य स्थान तक पहुंचना होता है उस जगह की तलाश में निकल जाते हैं। अकेले भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां जो हैं वो डाक में डाली जाती हैं रोज। तो इसी से आपको ये पता चल सकता है कि पत्र जो है वो आज भी कितनी अहमियत रखते हैं, कितना महत्व रखते हैं, कितने जरूरी है हमारे लिए, कितनी इनकी उपयोगिता है। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, मतलब जो लोग होते थे पहले पत्र पहुंचाते थे या फिर तेज घोड़े होते थे उनके द्वारा पत्र जो है वो पहुंचाया जाता था, उसके बाद पहिए आ गए, बस फिर तो ट्रेन से या तार से जो है बहुत बदलाव आ गया था, जो पत्र थे वो और जल्दी पहुंचने लगे थे। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद को पहुंचाने का काम किया, तार से और जल्दी पहुंच जाते थे, और अब तो बिल्कुल ही बदल गया है। टेलीफोन और वायरलेस की दुनिया ने तो पत्र पहुंचाना मतलब जैसे बहुत ही आसान कर दिया है और बहुत जल्दी हमारी जो सूचना है, हमारा जो संदेश है वो दूसरे तक पहुंच जाता है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रवाहित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेखक कहते हैं कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के लिए और पत्रों को सही दिशा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, कोशिशें की गई। पत्र की जो पत्र लिखने की जो हमारी संस्कृति रही है, जो पिछले जमाने से चलती आई है कि लोग एक दूसरे को पत्र लिखते रहे हैं, उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए और उसे विकसित करने के लिए ये किया गया कि स्कूलों में भी बच्चों को पत्र लेखन पढ़ाया जाएगा। आप भी पढ़ते होंगे पत्र कैसे लिखा जाता है, तो वही पत्र लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि दुनिया के और कई देशों में भी ये प्रयास किया गया कि पत्र लेखन की कला को जो है वो मिटने नहीं दिया जाए और इसको और विकसित किया जाए, इसका विकास किया जाए। विश्व डाक संघ जो है उसने भी अपनी तरफ से काफी कोशिशें की और उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी, कंपटीशन रखा जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे पत्र लिखने की कला को सीखेंगे, उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जीतेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने और जीतने के लिए वो इस कला को सीखेंगे, तो इससे जो ये कला है पत्र लेखन की वो विकसित होगी। 1972 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। ये सही बात है कि खासतौर से बड़े बड़े जो शहर हैं, जो महानगर हैं, वहां पे अन्य जो संचार साधन है उनका विकास बहुत तेजी से हुआ है, जिसकी वजह से पत्र की जो आवाजाही है, पत्रों का जो महत्व है वो जरूर थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। आप देख सकते हैं इसका प्रभाव, आपको पता होगा, आपने अपने जीवन में कभी किसी को आज तक कोई पत्र नहीं लिखा होगा जहां तक मुझे पता है। अगर आपने लिखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखा होगा क्योंकि अब हम फोन पर, कंप्यूटर पर SMS कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, फैक्स कर देते हैं, आजकल तो व्हाट्सअप, फेसबुक एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जो महानगर हैं वो इन चीजों पर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, इन पर निर्भर हैं, और वो पत्रों से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। लेकिन जो देहाती दुनिया है, गांव में आज भी यही पद्धति चलती है, वो आज भी पत्र लिखकर एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, आज भी पत्रों का उतना ही महत्व है। और व्यापारिक डाक जो है, जो व्यापारिक डाक होते हैं, उनकी संख्या आज भी लगातार जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप बारीकी से देखें तो आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसने कभी अपने जीवन में कोई पत्र ना तो लिखा हो और ना ही लिखाया हो, या फिर किसी के पत्र का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। जिस समय की ये बात है, जिस समय अरविंद सिंह जी ने इस निबंध को लिखा था, उस टाइम की बात अलग थी। तब तक हर इंसान ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो पत्र लिखा ही होता था। आज भी पत्र लिखे जाते हैं, पर महानगरों में इनकी संख्या कम हो गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। 1991 से जब वैश्वीकरण का युग आया है, तब से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। छोटी होने का मतलब ये है कि लोग बहुत पास आ गए हैं। अब यहाँ से अमेरिका तक भी अगर कोई संदेश भेजना हो तो उसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, इसलिए अब लोग नॉर्मली इतना पत्र नहीं लिखते हैं। लेकिन जिस समय की ये बात है, उस समय तक हर व्यक्ति ने कभी ना कभी पत्र लिखा होता था, और इनमें सबसे खास जो थे वो सैनिक थे। ये लोग तो बिल्कुल बहुत ही बेसब्री के साथ अपने घर से आए हुए पत्रों का इंतजार करते थे। जो इनकी उत्सुकता होती थी उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। जो सैनिक बॉर्डर पे तैनात होते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, उन्हें अपने घर से पत्रों के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता था। उस टाइम पत्र पहुंचने में भी बहुत टाइम लगता था, महीनों लग जाते थे, और घर वाले भी उनकी तरफ से पत्र आने का इंतजार बहुत बेसब्री से करते थे। पर परिवहन साधनों का जब विकास हुआ है, उसके बाद से पत्र पहुंचने में अब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, अब इतना टाइम नहीं लगता, अब पत्र जल्दी पहुंच जाते हैं। और अब पत्र जो है एक इकलौता साधन नहीं है, अब तो बहुत सारे साधन है। आपको अपना संदेश किसी को भेजना है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, SMS, व्हाट्सएप एंड फैक्स, ईमेल, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, और पहले चिट्ठी ही एकमात्र इकलौता साधन हुआ करता था अपनी बात को एक दूर रहने वाले व्यक्ति के पास पहुंचाने का। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की पत्रों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। लेखक कहते हैं कि आज भी देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने पुरखों की, पूर्वजों की चिट्ठियों को बचाकर, सहेज कर, संजो कर एक विरासत के रूप में रखा हुआ है। और इनमें बहुत ही प्रमुख वो लोग हैं जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, उद्यमी, कवि या प्रशासक हैं, सन्यासी हैं। इनके जो पत्र हैं, इनके जो रचनाएं हैं, इनको ये बहुत बड़ा अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। इनके पत्रों पर बड़ी खोज होती है कि उस टाइम किस तरह के पत्र लिखे जाते थे, कैसी भाषा का वो प्रयोग करते थे, क्या करते थे, क्या लिखते थे, क्या उनके विचार थे, इन सबको। अब अगर हम मान लें कि उस टाइम भी ऐसे ही संचार के साधन होते जैसे आज हमारे पास हैं, तो पंडित नेहरू ने जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, उसकी जगह वो क्या करते? वो अपनी बेटी को फोन करते। लेकिन तब जो एक पिता के पत्र, पुत्री के नाम ये जो लिखा गया था, ये नहीं लिखे जा सकते। तो हम अगर नेहरू जी ने अपनी पुत्री को फोन किया होता और उन्होंने बात की होती, तो हम कभी नहीं जान पाते कि उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा। आज जब हम पढ़ते हैं कि पिता के पत्र, पुत्री के नाम जो पत्र थे, जो अब हमें पढ़ने को मिल जाते हैं, वो जो लोगों के बीच एक प्रेरणा देते हैं, लोगों को जो एक आशा देते हैं, उम्मीद देते हैं, वो लोगों को कभी नहीं मिल पाती, वो कहीं खो जाता। पत्रों को आप सहेज कर रख सकते हैं, उन्हें सालों साल संभाल कर रखा जा सकता है, लेकिन SMS को आप इतना सहेज कर नहीं रख सकते, उनको आप जल्दी भूल जाते हैं। इनका प्रभाव जो है वो मनुष्य मस्तिष्क पर इतना गहरा नहीं होता है जितना पत्रों का होता है। और SMS को आप कितना ही संभाल के रखेंगे, 2-4 दिन, महीने, साल भर भी रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसे डिलीट कर ही देंगे। तो इनका SMS वगैरह का इतना महत्व नहीं होता है। और जो सब महान महान हस्तियां हमारे देश की रही हैं, उनकी जो सबसे बड़ी यादगार चीज है, जो धरोहर है, वो क्या है? वो उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। और महात्मा गांधी तो इसमें सबसे आगे हैं। आप दुनिया के किसी भी संग्रहालय में चले जाइए, वहां पर उनके पत्र जरूर मिलेंगे, आप उनके द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी ने बहुत लोगों को पत्र लिखे थे, अंग्रेजों को गांधी ने, नेहरू जी को, अम्बेडकर जी को, मतलब हर किसी को। तो वो सभी को पत्र लिखते रहते थे। जब आप उनके किसी संग्रहालय में जाएंगे, उनके पत्रों को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एक प्रेरणा मिलेगी उससे, तो आपको जरूर देखना चाहिए। और ये जो पत्र होते हैं, इनसे आप देश, काल और उनके समाज को जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। क्योंकि आप पत्र पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा किस भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि ये किस समय का पत्र है, भाषा से पता चलता है, या फिर किस तरह की स्याही उसमें इस्तेमाल की गई है, किस तरह का पेपर जो है जिस पर वो पत्र लिखा गया है, इस्तेमाल किया गया है, उससे पता चलता है कि ये किस समय का पत्र है, किस समय ये लिखा गया था। भारत में आजादी से पहले जब महासंग्राम चल रहा था, तब अंग्रेज अफसरों ने भी अपने परिवार के लोगों को बहुत सारे पत्र लिखे थे। बाद में ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक भी बने, और इन पत्रों ने साबित किया, हमें ये दिखाया कि ये पत्र जो थे वो कितने जमीनी स्तर पे थे, कितने जुड़े हुए थे, कितनी मजबूती थी इनके अंदर। जब आप उन पत्रों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, और पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया भर से महात्मा गांधी जी के लिए जो पत्र आते थे उसपे सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिखा होता था और पूरा कोई एड्रेस नहीं होता था, फिर भी वो पत्र महात्मा गांधी तक पहुंच जाते थे। समझ लीजिए आप कि महात्मा गांधी उस समय कितना महत्व रखते थे और उनको मतलब हर कोई जानता था। महात्मा गांधी जहां भी होते थे पत्र पे सिर्फ इतना लिखा होता था कि ये पत्र महात्मा गांधी जी के लिए है और इंडिया में वो है, तो बस पत्र गांधी जी के पास पहुंच जाता था चाहे वो कहीं भी होते थे। आजादी के कई और जो हस्तियां थी उनके साथ भी ऐसा ही होता था। जो प्रमुख प्रमुख लोग थे उनके साथ यही होता था, जैसे मान लीजिए नेहरू जी या और भी कई सारे लोग हैं तो उनके साथ भी यही होता था। गांधी जी के पास बहुत सारे पत्र आते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी बहुत प्रमुख थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई थी, तो इसलिए उनके पास हर जगह से पत्र आते थे। ब्रिटिश लोग भी उन्हें पत्र लिखते थे, विदेशों से भी उन्हें पत्र आते थे और देश के लोगों से भी उन्हें कई पत्र आते थे। अलग अलग जगहों से उन्हें पत्र आते रहते थे। वो हमेशा पत्र का जवाब जो है उसी टाइम देते थे, मतलब जिस टाइम उनको वो पत्र मिला वो उसी समय उसका आंसर उसका जवाब लिखने के लिए बैठ जाते थे। और ज्यादातर पत्रों का जवाब वो खुद ही लिखते थे, मतलब दूसरों से लिखवाते नहीं थे, वो ज्यादातर पत्र खुद ही लिखा करते थे। जब सीधे हाथ से लिखते लिखते उनका हाथ दर्द करने लग जाता था तो वो उल्टे हाथ से लिखना शुरू हो जाते थे, पर उनको पत्रों का जवाब देना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उन्हें अच्छा लगता था और वो पत्रों का जवाब जरूर देते थे और सारे पत्रों का जवाब देते थे। सिर्फ महात्मा गांधी नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो और लोग शामिल थे उनके भी पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। और पत्र भेजने वाले जो लोग हैं वो उन पत्रों को कोई आम चीज की तरह नहीं मानते थे कि बस अरे पत्र ही तो है कहीं भी रख दिया, नहीं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम किसी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज को जिस तरीके से रखते हैं, जैसे अगर हमारा कोई भी बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, कोई कागज है जिसे आपको संभाल के रखना है, उनके लिए वो पत्र उसके समान होता था, बस उसे सहेज कर रखना है। कई लोग तो उसे फ्रेम करवा लेते थे, शीशे में गढ़वा लेते थे, जैसे आप अपनी तस्वीर को करते हैं वो शीशे में गढ़वा लेते थे। तो ये होता है पत्रों का जादू। क्या आप ऐसा मैसेज के साथ करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पत्रों का जादू है जो लोगों को अपने से बांध के रखता है और पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। जैसे पत्र होते हैं उन्हीं पत्र के ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिख दी जाती हैं। तो ये पत्रों का जो है वो महत्व है। आगे, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 41 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। लेखक कहते हैं कि जो पत्र हैं वो किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से कम नहीं है। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जो थे वो खास तौर पर जो भी नए लेखक होते थे उनको एक बहुत ही प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते, सजग रहते थे, जागरूक रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र जो हैं वो भी बहुत प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा देते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से लेके 1941 तक के बीच के जो पत्र थे उनकी जो बातचीत थी उसका जो संग्रह है 1915 से 41 तक के जो पत्र हैं उनका संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसमें उस समय के बहुत सारे नए तथ्यों का खुलासा होता है, आपको देखने को मिलते हैं और उस समय की मनोदशा का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेखा जोखा मिलता है कि उस समय की क्या मनोदशा रही होगी, उस समय की स्थिति क्या थी। तो ये सब आपको उस समय के पत्र पढ़कर उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। आगे, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की डांडियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। पत्र व्यवहार के विषय में ये बताना बहुत आवश्यक है कि पत्र लेखन की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, लेकिन इसका असली विकास भारत के आजादी पाने के बाद ही हुआ है। सरकारी विभागों में सबसे विश्वसनीय गुडविल डाक विभाग ही है। इसका एक विशेष कारण यह है कि डाक विभाग लोगों को आपस में, ये जो डाक विभाग है, ये लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसकी पहुंच घर घर तक है। आज जबकि संचार के नए और उत्तम साधन आ गए हैं, फिर भी चिट्ठी पत्र के महत्व को कम करके नहीं आका जा सकता है। इनकी हैसियत आज भी बरकरार है। आज भी घर घर में, चाहे वो शहरी इलाकों की आलीशान हवेली हो या फिर गांव की झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, किसी दुर्गम स्थान, कोई जंगल से घिरा हुआ गांव या फिर पहाड़, या जहां बर्फ गिर रही है, समुद्र का तट हो जहां मछुआरे हैं, या रेगिस्तान की डांडियों में रह रहे लोग हैं, आज भी सबसे ज्यादा जो बेसब्री से जो इंतजार होता है वो किसका होता है? खत का होता है, चिट्ठी का होता है, पत्र का होता है। तो एक या दो नहीं बल्कि करोड़ों लोग खतों के आने का इंतजार करते हैं और खत लिखते हैं, और करोड़ों लोगों के खत जो हैं वो भारतीय डाक उनके घरों तक पहुंचाते हैं। तो इनकी बहुत बहुआयामी भूमिका देखी जा सकती है। दूर देहातों में, गरीब गांवों में आज भी जो उनके घरों का चूल्हा है वो मनी ऑर्डर से ही चलता है। मनी ऑर्डर क्या होता है? जैसे अब कोई गांव में कोई परिवार रहता है, उनके घर से मान लीजिए उनका एक बेटा है काम करने के लिए दूर शहर में चला गया है, तो गांव में पैसे कैसे भेजे जाएं, उसके लिए वो आज भी मनी ऑर्डर का ही इस्तेमाल करते हैं। मनी ऑर्डर से पैसे घर भेजते हैं। तो आज भी गांव में लाखों घरों का चूल्हा मनी ऑर्डर के पैसों से चलता है। और गांव में, गरीब बस्तियों में जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जो आता है डाकिया जो होता है, उसको देवदूत के रूप में देखा जाता है। उसको एक भगवान के दूत के रूप में माना जाता है कि भगवान के द्वारा भेजा गया ये दूत है। तो चिट्ठियों के महत्व के बारे में पढ़ लिया आपने। चिट्ठियां हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और जो नई आधुनिक चीजें हैं इनके आने से भले ही महानगरों में चिट्ठियों का प्रयोग थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जाता कि अब चिट्ठियों का कोई महत्व नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है। चिट्ठियां आज भी उतना ही महत्व रखती हैं और आज भी बहुत से लोग चिट्ठियां लिखते हैं और लिखनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर, प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि फोन या SMS को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, सहेज के रखना बहुत मुश्किल है। पत्र में किसी की यादों को सहेज कर रख सकते हैं, फोन का SMS ये नहीं कर सकता। भविष्य के लिए संभाल कर रखे गए पत्रों को भविष्य में पढ़ा जा सकता है, लेकिन फोन में जो SMS होते हैं उनके संदेशों को बहुत लंबे समय के लिए संभाल कर नहीं रखा जा सकता। और जो बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, पत्रकार, कवि, प्रशासक हैं, इनके पत्रों को अनुसंधान का विषय माना जाता है, लेकिन अगर इन्होंने फोन, SMS जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया होता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। दूसरा प्रश्न, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कदिक, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है, इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं, तमिल में कदिक कहते हैं, ये इन शब्दों से जुड़ी हुई इनकी भाषा है। तीसरा प्रश्न, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। पत्र लेखन की कला जो है उसका विकास करने के लिए कई प्रयास किए गए थे, जैसे कि स्कूल के जो पाठ्यक्रम होते हैं, जो पढ़ाया जाता है, उसमें पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया था। विश्व डाक संघ ने भी 1972 में 16 से कम वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया था। भारत तथा और अन्य देशों ने भी पत्र लेखन को बढ़ावा देने का निश्चय किया और इसकी तरफ प्रयास किए, कदम बढ़ाए। चौथा प्रश्न, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। पत्रों को धरोहर की तरह सुरक्षित बनाकर रखा जा सकता है और समय आने पर उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन SMS के साथ ऐसा संभव नहीं है। पत्र हमारी नजरों के सामने रहने से हमें उनका ध्यान रहता है, लेकिन SMS मोबाइल फोन के भीतर रहने से जल्दी से उनका ध्यान नहीं रहता। पत्रों को पढ़ने से व्यक्ति की लिखावट देखकर उसकी याद आ जाती है, लेकिन SMS में ऐसा पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है। आजादी के समय अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार के लोगों को जो पत्र लिखे थे उनसे आज भी पता चलता है कि ये संग्राम कितना महत्वपूर्ण था। SMS से ये सब संभव नहीं था। और संक्षेप में कहें तो पत्र में लिखी गई बातों को धरोहर बनाकर रखा जा सकता है, लेकिन SMS को नहीं। पांचवा प्रश्न, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल कभी नहीं ले सकते, और इसकी कई सारी वजह हैं। जैसे चिट्ठियों को देखकर चिट्ठी लिखने वाले की याद आती है, उसका पूरा चित्र जो है वो हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, लेकिन फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, इसके द्वारा ऐसा संभव नहीं है। चिट्ठियों को भविष्य के लिए सहेज कर रखा जा सकता है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल फोन, इनसे जो संदेश प्राप्त होते हैं, जो आवाज आती है, उनके साथ ऐसा मुमकिन नहीं है। पत्र जो सुखद एहसास देता है, जो फीलिंग्स हमारी उसके साथ अटैच होती हैं, जुड़ी होती हैं, वो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल फोन से नहीं होती। पाठ से आगे, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। ये आपको पता करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। दूसरा, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? पिन कोड जो लिखते हैं वो भी एक तरीके का एड्रेस होता है, कैसे? पिन कोड का अर्थ होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी शहर का पिन कोड 6 नंबर का होता है। इन 6 अंकों में हर अंक का अपना अलग अलग महत्व होता है। पहला अंक उस राज्य का होता है जिस राज्य में पत्र भेजना चाहते हैं। दूसरा और तीसरा अंक उस राज्य के उप क्षेत्र से संबंधित होता है कि आप किस क्षेत्र में। और लास्ट के जो 3 अंक होते हैं वो उस डाकघर से संबंधित होते हैं जिस डाकघर में आपका पत्र जाना है। तो इसलिए पिन कोड की मदद से भी पत्र जो है वो आसानी से उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है जहां आपको भेजना है। तीसरा, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे और वे पत्र उन तक आसानी से पहुंच भी जाते थे। इसकी वजह यह थी कि महात्मा गांधी को न केवल भारत बल्कि विश्व के हर देश में प्रसिद्धि प्राप्त थी। वे भारत के लोगों के बीच में तो इतने प्रसिद्ध थे कि केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर ही पत्र उन तक आसानी से पहुंचाए जा सकते थे। तो आपको पत्रों का महत्व समझ आ गया होगा, हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।